अंकुर तेरे को पता चला एनएफएस का नए गेम का लीक आया है कुछ?
हाँ यस, आज देखा मैंने एनएफएस 2021 का एक फैन मेड लीक आया है। सो लेट्स सी, बिकॉज ये की तरफ से तो एक न्यूज़ आया है कि ये साल एनएफएस नहीं आएगा, मतलब नेक्स्ट ईयर में उसको पोस्टपोन किया है। बट जैसे लास्ट ईयर वो रीमास्टर आया था ना हॉट परस्यूट का,
बराबर बराबर।
सो आई गेस ये साल मे बी वो मोस्ट वांटेड का रीमास्टर वर्जन आ सकता है। अगर वो
अच्छा
आया तो इट विल बी अ किलर, आया तो इट विल बी अ किलर, बहुत 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 दिखेगा वो गेम, बहुत अच्छा होगा।
मतलब वो वीडियो तो ऐसा था कि मतलब अगर कोई बहुत पहले से एनएफएस खेल रहा है तो उसको तो बहुत मजे आने वाले हैं। सो लाइक
यस
कार
यस
रेसिंग गेमिंग कम्युनिटी जो है इट इज गोना बी रियली वेरी हैप्पी मेरे हिसाब से तो।
यस हाँ, और यूट्यूबर्स को भी अच्छा कंटेंट मिल सकता है,
कंटेंट तो भाई एनएफएस जब भी आता है बहुत कंटेंट लेके आता है। सो लेट्स
बहुत
स्टार्ट विद
ज्यादा।
द पॉडकास्ट नाउ। स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ वन वीक्स पॉडकास्ट। सो गेटिंग स्टार्टेड विद द पॉडकास्ट, द फर्स्ट न्यूज दैट आई वुड लाइक टू नॉट टेल यू एक्साइटेडली बट टेलिंग इट इन वेन दैट वी हैव लॉस्ट अनदर कंपनी, द एलजी लेगेसी विल बी डाउन। सो एल जी इज़ प्लानिंग टू शट डाउन देयर स्मार्टफोन बिजनेस इन जुलाई एंड दे आर थिंकिंग ऑफ फोकसिंग मोर ऑन द स्मार्ट होम डिवाइसेस एंड द रोबोटिक्स। सो एल जी ऑन द लास्ट संडे डिक्लेयर दैट द लेगेसी ऑफ द स्मार्टफोन्स माइट कम टू एन एंड। सो द बींग एन इनक्रेडिबली कॉम्पिटिटिव मोबाइल सेक्टर सो विच इज़ बींग डोमिनेटेड बाई एप्पल एंड सैमसंग मोर एंड मोर, और ऑब्वियसली चाइना की तरफ से तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, शाओमी है एंड मच मोर। सो बेसिकली उस साउथ कोरियन कंपनी मतलब जो एलजी है उनके साथ ऐसे हो गया कि देवर बेयरिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस बिकॉज उनका जो प्लानिंग था, उनका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी था, उनका जो मोबाइल का प्राइसिंग था वो मार्केट में थोड़ा बहुत अजीब चलता था हरदम एंड समहाउ उनको जो लॉसेस हुआ है तो उसको लेके दे हैव डिक्लेयर्ड दैट दे वुड लाइक क्लोज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मोबाइल डिवाइसेस और दिस विल बी डन टू द लाइक टिल द एंड ऑफ दिस कमिंग जुलाई। बट ऑब्वियसली बिकॉज उनके फोन्स अभी भी मार्केट में है तो उन्होंने बोला है कि दे वुड बी गिविंग द सॉफ्टवेयर सपोर्ट मतलब जो कुछ भी रिक्वायर्ड होगा। बट बिकॉज उनका एल जी इज मोर इन टू द स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स और उनका वहाँ पे ऐसा है ना दबदबा है बोल सकते अपन, तो वही है कि मतलब व्हीकल कंपोनेंट्स और रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ वो लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो आई गेस इट इज़ काइंड ऑफ एन ह्यूज लॉस आई वुड से बिकॉज एल जी वॉज वन बिग कंपनी हु वुड यूजली टेक ऐसा ऐसा कोई ऐसा बिग स्टेप विच वुड ईजिली ब्रिंग अप सम रियली गुड मोबाइल फोन्स इन द मार्केट।
हे गाइस, आई एम अद्वैत। और ये जो एलजी के साथ हुआ वो तो बुरा ही हुआ, तो उसके ऊपर से नोकिया ने उसका ही फायदा उठाया और अपने तीन नए सीरीज लॉन्च किए हैं नोकिया ने, स्टार्टिंग ऑफ सी सीरीज, जी सीरीज एंड एक्स सीरीज। सी सीरीज बहुत ही चीपर वर्जन, उसका चीपर वर्जन है स्मार्टफोन्स के लिए, या फिर एंट्री लेवल स्मार्टफोन बोल सकते हैं हम उसको, जो एंड्रॉयड 11 के साथ आ रहा है। एंड इट इज पावर्ड बाय ऑक्टा कोर यूनिसॉक जीपीयू सीपीयू। द स्पेक्स आर काइंड ऑफ लाइक एंट्री लेवल, जिसमें आपको 1 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ मिल जाता है, और C20 जो है वो 32 GB स्टोरेज के साथ है। बट हम जो दूसरी सीरीज है हमारी नोकिया की, G20 और G10, जो G सीरीज है, जो मिड लेवल स्मार्टफोन बोल सकते हैं हम लोग उसको, उसके साथ हमें मीडिया टेक हीलियोस 35 मिल जाता है, और रैम है जो रैम इज डिसेंट, लाइक 3 GB रैम, एंड विद G20 वी हैव 4 GB रैम, एंड द स्टोरेज कैपेसिबिलिटी हैज 32 GB, एंड द अदर वेरियंट है 16 GB, विच इज आर ऑप्शनेबल। बैटरी कैपेसिटी इन बोथ सी सीरीज एंड जी सीरीज कम विथ, ओके, देन लास्ट हमारा एक ही सीरीज बच जाता है जो है एक्स सीरीज। एक्स सीरीज आई रिकमेंड देम, एक्चुअली वो अच्छे हैं, जिसमें ड्रैगन 380 के साथ आते हैं, और उसका बैक कैमरा इज 48 मेगापिक्सल कैमरा ऑफ X10 एंड द X20 सीरीज जो अच्छी है, जो मैं रेकमेंड करता हूँ उसके लिए. उसमें हम लोग हमें दिखता है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 480 विथ रियर मेगापिक्सल कैमरा, रियर कैमरा ऑफ 48 मेगापिक्सल एंड 5 मेगापिक्सल ऑफ माइक्रो कैमरा, जिसमें हमें रैम 4 GB रैम एंड 6 GB रैम का वेरिएंट मिल जाता है विथ स्टोरेज ऑफ 64 GB एंड 128 GB कैपेसिटी. हियर द बैटरी कैपेसिटी ऑफ दीज टू फोन ऑफ एक्स सीरीज कम विथ 5000 MHz एंड रेजोल्यूशन ऑफ 720 पिक्सल्स.
थैंक यू अद्वैत. और नोकिया सच में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, वो एक अच्छी बात है. और ये शायद मई में रिलीज होने वाला है ये सीरीज. तो मैं आता हूँ वन प्लस के साथ. सबसे पहले वन प्लस वालों के लिए खुशी की बात है, वन प्लस पे में सून लॉन्च इन इंडिया. एज अ टिप्स्टर शेयर्ड अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट्स ट्रेडमार्क फीलिंग इन द कंट्री वाया ट्विटर. द मोबाइल पेमेंट सर्विस वॉज फर्स्ट अनाउंस इन 2019 एंड वॉज सब्सिक्वेंटली लॉन्च अ ईयर लेटर इन चाइना. OnePlus Pay is currently active in China and is touted for its fast service. There has been no official information from OnePlus regarding the launch of this service in India as of yet. However, if the trademark feeling is indeed true, it can be expected to launch in India later this year. OnePlus Pay will join and compete with the vast list of mobile payment services like Google Pay, Paytm, PhonePay, Samsung Pay and more in the country. So we would see how does it stand and how it can
leke aa raha hai market mein basically.
Ha bilkul,
that's nice. So in the same way, actually, to bring up the competition, or rather I would say to share the competition, Reliance Jio tied up with Bharti Airtel, that is the Airtel company, for the shares of the frequency bands in Delhi, Mumbai and Andhra Pradesh. And that cost them, that particular share costed them 1.5 crore. So basically, ऐसा है कि what they have done is Mukesh Ambani obviously उन्होंने ऐसे किया है कि he wanted to acquire the spectrum of 800 megahertz. So basically कैसा है कि 800 megahertz वाले spectrum में basically हमारा जो transfer spectrum है आंध्र प्रदेश का, that is 3.75 megahertz. दिल्ली का इज 1.25 मेगाहर्ट्ज़ एंड मुंबई का इट इज 2.5 मेगाहर्ट्ज़. सो बेसिकली ये जो पर्टिकुलर शेयर उन्होंने खरीदा है, दिस इज गोइंग टू ब्रिंग देम अ 2 times मोर बैंडविड्थ इन दिस पर्टिकुलर रीजन्स. एंड ऐसा सुनने में आया है कि जो एग्रीगेट इसका पूरा वैल्यू जो एयरटेल की तरफ जाने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी 137 crores. सो बेसिकली पॉइंट ऐसा है कि ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन जो जियो और एयरटेल के बीच में हुआ है, दिस इज टू ब्रिंग द कॉम्पिटिशन टू अ लेवल एंड ऑल्सो सप्लाई अ बेटर, आई वुड से अ बेटर सर्विस. सो मे बी ऐसा मे बी अब आगे भी सुनने मिल सकता है कि जियो एक्वायर्ड, लाइक जियो ने अक्वायर कर लिया एयरटेल को. वी नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन. लाइक जियो बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सेल कर रहा है एट प्रेजेंट. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. बट आई गेस लाइक अभी रिसेंटली सुनने में आया था राइट, दैट जियो इज गोइंग टू लॉन्च देयर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स. मोबाइल्स तो है ही, लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स. सो आई गेस लेट्स सी हाउ इट गोज. सो इज देयर एनीथिंग एल्स अद्वैत, लाइक कुछ और न्यूज़ है तेरे पास?
हाँ, एक्चुअली एप्पल सीईओ टिम कुक टॉक्स ऑफ autonomous cars during his podcast. He says that it's an self-driving cars are as an ideal match for technology giant during these days. But he says this at on Monday on New York Times. So actually his words are like an autonomous car is a robot. So there are a lot of things you can do to an autonomy. We will see what Apple does. He says this to Sway in Sway podcast. And saying this, he actually appreciates Tesla for what an unbelievable job they have done, not only in establishing a lead, but also keeping the lead for such a long time in the electric vehicle space. They also contacted the Japanese automaker Nissan and South Korean-based vehicle making company Hyundai in February for potential alliances with Apple for self-driving cars, but they actually denied that opportunity. So they at the end, Cook says that I think it's hard to argue that Apple Store is not an economic miracle. They also want to inquire the another autonomy, autonomous vehicle part, which is still untouched for a lot of other companies.
So basically, Apple wants to jump into the competition soon.
Yes, yes, actually.
But the joke lies there कि Apple के Apple वाली गाड़ी में विंडो रहेगा कि नहीं. So yeah.
पता ही चलेगा बाद में.
That joke is gonna be taken too far and too long. So what's up with the next news? Ayush, any news with you?
So here is news for users who are shifting from Android phone to Apple devices, or some if. Some people are shifting from Apple devices to Android devices. So usually what comes in your mind while migrating data between Android to iOS or vice versa, you would probably go over a third party app. But this news says that WhatsApp reportedly testing chat history migration between Android and iOS devices. So listen it up. WhatsApp is testing a new feature that will let users migrate their chat history between Android and iPhone devices. According to the new report, WhatsApp had previously said that the third-party apps that we talk about that claim to help users migrate chat history across the two platforms violated terms of service. That is at stake. Your privacy at stake. So an earlier report also says that WhatsApp could also introduce a feature soon that will not require users to keep their phones connected to the internet when using WhatsApp web. And according to that report, when a WhatsApp user tries to link the device having a different operating system, the app needs to be updated to the latest version available on the App Store or Test Bite in order to avoid any compatibility error with the Android versions. So
basically, agar WhatsApp web bina mobile ko internet se connected chal gaya na, meri life bahut zyada sorted rehne wali hai, because I would take this.
Bahut badhiya ho jayega wo,
but matlab mere zindagi mein hai na ek hi problem hai, mera phone jab bhi normally internet se connected rehta hai wo mere ko bolta hai try connecting back, to wo issue mere life mein se chala jayega if that particular functionality rolls out. But talking about functionalities, Samsung recently launched Samsung Galaxy Smart Tag Plus. Now, Smart Tag Plus matlab Smart Tag pehle launch hua tha. So actually, Samsung ke jo ek pehle event hua tha, to in that particularly Galaxy Unpacked 2021 virtual event, matlab uska wo naam tha. So us particular event mein they had launched Samsung ka Galaxy Smart Tag. So उस time पे तो they were not going to talk about anything about the upcoming versions या फिर उसका क्या future है, but recently what they have done is they have just launched the Smart Tag Plus. And Smart Tag Plus क्या है? Smart Tag Plus में basically they have used two things, one is the Bluetooth module, one is the Wi-Fi module. So Bluetooth का low energy module use किया है और ultra wide band का technology use करके what they have done is कम पावर कंज्यूम करते हुए ज़्यादा एफिशिएंसी रखने वाले उस पर्टिकुलर डिवाइस की. एंड वो जो स्मार्ट टैग प्लस रहने वाला है, इट विल बी यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑगमेंटेड रियलिटी का जो कंप्लीट टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल्स रहता है, उन दोनों को यूज़ करके दे आर गोइंग टू हेल्प पीपल ट्रैक इफ दे हैव लॉस्ट समथिंग. सो बेसिकली दिस इज एन डिवाइस फॉर ट्रैकिंग समथिंग. ओके, सो दिस पर्टिकुलर डिवाइस वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी. And it was launched at a cost of $39.99, and for the two units it was going to come around at $65 something. So basically point aisa hai ki they are progressing towards augmented reality, and augmented reality world is really vast and to be honest not much tapped. So if Samsung is getting more into it, so I guess we would be seeing much and much better products from Samsung in that particular region, I would say. What say Advait, what do you feel about that?
Samsung to badhiya kar hi lega, but Apple is going to launch a new phone in 2022, that is the most infamous phone, iPhone SE 3, जो 2020 में पहले ही बहुत फेमस हुआ था आईफोन एस सी 2, जो हम लोग बोलते थे आईफोन एस सी 2020 वर्जन. एंड अभी तक कुछ लीक्स नहीं है या फिर कोई ये नहीं है, बस दे आर आर ओनली रूमर्स एंड दे आर सेइंग, बट इट विल कम इन सेम 4.7 इंच रेटिना डिस्प्ले एंड वी सॉ लाइक वी सॉ इन 2020 वर्जन ऑफ आईफोन एस सी. So, कुछ तुझे बताना है आयुष अगले लॉन्च?
मेरी न्यूज थोड़ी अलग रहेगी. टेस्ला का इंडिया में आना, तो कुछ महीनों पहले अपने जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उन्होंने बोला था कि टेस्ला उनका ऑपरेशन अपने मतलब इंडिया में स्टार्ट करेगा 2021 से. एंड वो सोच रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला जा सकता है. तो टेस्ला इज स्काउटिंग फॉर द शोरूम स्पेस इन 3 सिटीज इन इंडिया. So, and hires also executives for lobbying. So it's a great news. तो अभी जो इलेक्ट्रिक कार मेकर है उन्होंने जनवरी में एक लोकल कंपनी रजिस्टर की है इंडिया में. शोरूम ऐसा एक्सपेक्टेड है कि न्यू दिल्ली, मुंबई वेस्ट में और बेंगलुरु में खुल सकते हैं. तो देखते हैं कितना मार्केट कैप्चर कर पाता है टेस्ला.
बिफोर टेस्ला कमिंग टू इंडिया, मतलब मेरा तो दिमाग में ऐसा है कि इफ टेस्ला इज गोइंग टू कम टू इंडिया, बिकॉज टेस्ला विल हैव टू ट्रैवल, लाइक मतलब इंडिया के जो रोड्स है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, मतलब जो इंडिया का रोड नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है. तो टू ट्रैवल अराउंड द होल कंट्री टेस्ला के बैटरी को चार्ज करना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है. तो टेस्ला का जो चार्जिंग नेटवर्क होता है, द सुपर चार्जर्स जो बोलते हैं वो लोग, तो उस पर्टिकुलर नेटवर्क को आई गेस टेस्ला को पहले यहाँ पे बिल्ड करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा. देन दे शुड लुक आफ्टर लाइक गेटिंग इनटू इट, बिकॉज एक चीज़ ऐसी तो है, बिकॉज बीइंग इन इंडिया वी माइट नो दैट कभी कभी लाइक देर आर सम चांसेस ऑफ गेटिंग सम पीपल हु कैन स्पॉइल फ्यू थिंग्स. बट टॉकिंग अबाउट स्पॉइलिंग, अभी रिसेंटली मेरे को एक न्यूज़ पढ़ने में आई थी दैट इन इंडिया, एक्चुअली इन नोएडा टू बी ऑनेस्ट, एक चोर ने एक फ़ोन स्नैच किया. लाइक फोन स्नैचिंग के केसेस तो सुने होंगे तुम लोगों ने. तो एक चोर ने एक फोन स्नैच किया, बट आफ्टर लुकिंग एट द फोन उसने वो फोन वापस कर दिया. अभी सोच रहे होंगे क्यों, तो बिकॉज उसको लगा कि वो वन प्लस का 9 प्रो है, बट वो निकला सैमसंग का गैलेक्सी S10 प्लस. सो बेसिकली दिस इज क्वाइट अ लाफेबल सिचुएशन, बिकॉज ओवरऑल अपना जो फोन स्नैचिंग का सिचुएशन है इट इज क्वाइट रियली बैड टू हैपन, एंड ओवरऑल जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी वो काफ़ी कॉमेडी थी. बट नहीं, इट इज क्वाइट क्वाइट फनी टू थिंक अबाउट इट दैट चोर ने फोन वापस कर दिया. सो या नाउ कमिंग बैक टू द अपडेट्स अपार्ट फ्रॉम द जोक्स, सो रिसेंटली लेनोवो ने एक नया थिंक पैड का सीरीज लॉन्च किया, विच इज द थिंक पैड 14 सीरीज. This is the particularly Ryzen edition. This particular laptop is carrying a Ryzen 5 5500 CPU and 60 Wh ka battery hai. This particular Ryzen laptop will be having a 300-nit display with a Windows 10 home version. It would be a 1080p panel and TOV Rinet certification hai isko. So this particular laptop will have the AMD Ryzen 5500 CPU, which is a 6-core CPU, and this particular laptop will be having a 16 GB RAM and a 512 GB SSD. So talking about this particular laptop, I guess काफी ढंग का configuration है, and if it launches at a good enough price, I would say, because 1.5 kg कुछ ज़्यादा weight है नहीं. Look about it. So, agar it launches at a good price, so it can be an considerable option for everyone. What say, Ankur? Teko kya rakhta hai? Is particular laptop ke baare mein, matlab, acha configuration lag raha hai teko ye cheez?
यस, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन लग रहा है, बिकॉज जो राइजन 5000 सीरीज प्रोसेसर है वो एक तो पावर एफिशिएंट काफ़ी, एंड 60 वाट आवर इज लाइक ह्यूज, बिकॉज इवन द जो i7 प्रोसेसर है वो तक 45 वाट सपोर्ट करता है. सो 60 वाट इज लाइक गुड पावर एंड स्ट्रेंथ फॉर द लैपटॉप. एंड थिंकपैड सीरीज मोस्टली फोकस्ड है प्रोफेशनल्स के ऊपर, सो उनके लिए
गोना
इट्स
बी अ गुड
ऑन.
हिट इफ इट हिट्स प्रॉपर.
यस, एट द राइट प्राइस, मतलब प्राइसिंग सही होना चाहिए. इट्स नॉट, अगर ओवर प्राइस हुआ तो फिर नॉन सेंस नहीं बनता, देन पब्लिक विड गो फॉर मैकबुक ना.
हाँ, तो मैं कह रहा था कि जैसे अथर्व ने अंकुर से पहले बताया था कि लेनोवो लिंक लेनोवो थिंक बुक 14 लॉन्च हुआ है, वैसे एचपी ने भी अपना नया लैपटॉप रिलीज किया है जो कि है क्रोम बुक 11A. सस्ता किफायती लैपटॉप अभी मार्केट में है. इसके कुछ हाइलाइट्स है वो मैं पहले कहना चाहता हूँ. जैसे द लो कॉस्ट एचपी क्रोम बुक 11A हैज ऑफिशियली लॉन्च इन ऑन फ्लिपकार्ट. देन द स्पेक्स इंक्लूड्स 11 इंच HD टच स्क्रीन डिस्प्ले, कम्स विथ मीडिया टेक MP8183 एंड 4 GB RAM, एंड इसका प्राइस है 21,999. अभी मैं स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. जस्ट लाइक एज इट द क्रोम बुक 11 कम्स विथ 11.3 इंच स्क्रीन, IPS, HP has gone ARM route and time around opting for the chip, and the Chromebook 11 has MediaTek MP8183 जैसे मैं पहले बताया. इसमें जो GPU है वो ARM Mali 8872 MP3 GPU है, और जो इट इज क्वाइट कंसिडर्ड टू बी ग्राउंड डाउनग्रेड, जो थोड़ा GPU इज डाउनग्रेड बट द प्रोसेसर इज क्वाइट गुड हियर. MTech जो MediaTek MT है जो मैंने पहले ही बताया M8183. द क्रोम बुक हैज 837 आवर बैटरी एंड शुड लास्ट अप टू 16 आवर्स इन सिंगल चार्ज.
HP at such price is really commendable, but थोड़ा प्रोसेसर में थोड़ा प्रॉब्लम है,
हाँ
बट
वही वही.
ठीक है, ये प्राइस में HP अगर प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स गुड. जो अफोर्ड कर सकते,
हाँ,
मतलब
एंट्री लेवल के
लो
लिए
रेंज का
जो
एक्सपेक्ट
कॉलेज
कर रहे हैं
स्टूडेंट्स
वो.
है या फिर स्टूडेंट्स है, स्कूल
हाँ,
स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही सही ऑप्शन है, हो सकता है ये.
अलॉन्ग विद दिस आई वॉन्ट टू कैरी फॉरवर्ड माई कॉन्वर्जेशन टूवर्ड्स द टेक्नोलॉजीज यूज इन फोन. सो एज वी नो दैट टेक्नोलॉजीज आर इवॉल्विंग डे बाई डे, एंड एज द कॉम्पिटिशन इज मोर, बट द पीपल आर ऑल्सो पेइंग अटेंशन टू इट्स डिजाइन परस्पेक्टिव, एंड एनीथिंग यूनिक कम्स इन मार्केट इट गोज अप, मीन्स इट गॉट दैट वाओ इफेक्ट. सो द फोल्डेबल फोन्स जो है वो आज बूम चल रहा है, और सैमसंग ने जो फोल्डेबल फोन्स लॉन्च किया उसके बाद, मतलब उसने पहली बार लॉन्च किया तो विच वॉज एपिक, और उसका सेल्स भी सही है. तो उसके बाद में शाओमी ने लॉन्च किया, और फिर अभी जो एक न्यूज है उसके हिसाब से ओप्पो भी लॉन्च करने की सोच रहा है, और ओप्पो के दो फोल्डेबल फोन्स लॉन्च होंगे जिसमें वो इनवर्ट फोल्डिंग डिजाइन के होंगे. उसमें मैं आपको बता दूं कि तीन टाइप के डिजाइन होते हैं, एक इनवर्ट फोल्डिंग डिजाइन होता है, एक आउटवर्ट फोल्डिंग डिजाइन होता है, और एक स्लाइड स्क्रीन डिजाइन होता है. तो आप नाम से ही समझ सकते हो, तो काइंड ऑफ ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. इसके बाद में और एक न्यूज है कि इसका कंपेटिटर जो वीवो है वो भी रिसेंटली एक फोल्डेबल फोन लॉन्च करने का सोच रहा है, और शाओमी ने तो इसका मतलब एक MI मिक्स फोल्ड पहले से ही लॉन्च कर दिया है, तो वो तो कंपटीशन में है ही. सो द फोन विल टेक्निकली नॉट बी द ब्रांड्स फर्स्ट फोल्डिंग डिवाइस. अभी ऐसा क्यों? तो ओप्पो ने 2019 में एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया था, और वो उसमें मतलब आउटवर्ड फोल्डिंग स्क्रीन स्क्रीन डिजाइन के साथ था जो UI Matex की जैसा है. सो द न्यू डिवाइसेस दैट टिप्सटर मेंशंस हाउएवर विल बी द ब्रांड्स फर्स्ट टू फोन्स विद द इनवर्ट फोल्डिंग स्क्रीन सिमिलर टू द सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड और शाओमी एम आई मिक्स. ओके अद्वैत, डू यू हैव एनी न्यूज?
हाँ एक्चुअली, मतलब अभी रिसेंटली तुम्हें पता है बहुत सारा डेटा लीक या फिर डेटा ब्रीच बोल सकते हैं हम लोग उसको, हुआ है. तो कुछ सोशल मीडिया पे लाइक फेसबुक एंड लिंक्डइन, वैसे ही मेरे पास कुछ नंबर्स है या फिर कुछ न्यूज है उसके रिलेटेड. लिंक्डइन कंफर्म्स डेटा ब्रीच ऑफ 500 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड पर्सनल डेटा इज बीइंग सोल्ड ऑनलाइन. तो पर्सनल डेटा ऑनलाइन बेचा जा रहा है. जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू गिज़मोडो रिपोर्ट, हैकर्स आर यूजिंग सोफिस्टिकेटेड कैंपेन टू टारगेट यूजर्स डिवाइसेस. द रिपोर्ट कोट्स अ रिसर्च पब्लिश इन अ साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर. दिस ई सेंटर हैज वॉन्ट्स यूजर्स दैट हैकिंग ग्रुप इज टारगेटिंग द बिजनेस प्रोफेशंस ऑन लिंक्डइन with the fake job offers and efforts to infect them with the sophisticated backdoor trojan. So अभी ये backdoor trojan क्या होता है? It's a form of a malware that gives hackers remote access and control over the victim's computer and allows them to send, receive, and launch even delete their files. And as per report, the hackers are connected to a group called Golden Chickens. So yeah, ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है एक्चुअली. इतने 500 मिलियन मतलब बहुत ही ज़्यादा लोग हुए, राइट?
और ऐसा
Yeah,
ही कुछ
that's why
रिसेंट न्यूज आया था आई गेस अबाउट मार्क जकरबर्ग का भी कोई डेटा लीक हुआ हुआ था.
हाँ,
तो
एग्जैक्टली वही. हर जगह पे अभी डेटा ब्रीचिंग की न्यूज़ फैल रही है.
सो इट इज रियली सैड टू हियर अबाउट डेटा गेटिंग ब्रीच, बट आई गेस
यस,
प्राइवेसी लाइक प्राइवेसी इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट इज अ मिथ टू बी ऑनेस्ट. सो टू बी
ओके.
ऑनेस्ट इट इज रियली अ मिथ. अगर कोई एक छोटे से ट्रोजन की वजह से इतना सारा डेटा अगर लॉस हो रहा होगा, सो इट इज रियली अ बिग थिंग टू नोटिस. टॉकिंग अबाउट मैकबुक्स, मैकबुक में पहले रहता था राइट एक फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड ऑल, लाइक वो बटन के अंदर रहता था. दे वुड स्टार्ट दैट विद एवरीथिंग आई गेस. था ऐसा कुछ राइट ऑप्शन? बिकॉज आई एम नॉट अ एप्पल फैन और अ मैकबुक फैन आई वुड से, बट आई गेस फिंगरप्रिंट के थ्रू देर वॉज सम ऑथेंटिकेशन फॉर लाइक अनलॉकिंग योर लैपटॉप एंड स्टफ राइट.
टच आईडी
या टच
एप्पल के
आईडी,
टर्म,
यस 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 एप्पल
एप्पल के
टर्म्स
टर्म्स में,
यस
एप्पल
यस.
टर्म्स में टच आईडी बोलते हैं उसको
So like, would you like to
हम लोग.
elaborate the touch ID, the fingerprint scenario that is currently in the market right now?
हाँ, ओके. आई हैव सम इन्फो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द प्रेजेंट मार्केट दो टाइप के फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज होते हैं, एक तो ऑप्टिकल एंड द सेकेंड इज कैपेसिटिव. सो द बेसिक डिफरेंस क्या है? सी, द ऑप्टिकल सेंसर्स हैव बीन अराउंड फॉर अ वाइल. द वे ऑप्टिकल सेंसर वर्क इज बाय शाइनिंग अ ब्राइट लाइट ओवर द फिंगरप्रिंट, और वो एक डिजिटल फोटो क्रिएट करता है तुम्हारे फिंगरप्रिंट का. सो वेन एवर यू यू टैप ऑन द फिंगरप्रिंट, द लाइट सेंसिटिव माइक्रोचिप मेक्स द डिजिटल इमेज बाय लुकिंग एट द रिजेस एंड द वैलीज ऑफ द फिंगरप्रिंट, टर्निंग देम इनटू वंस एंड जीरोस एंड क्रिएट द यूजर्स ओन पर्सनल कोड. तो बट इसका डिसएडवांटेज भी है कि इट्स लाइक इट्स अ डिजिटल फोटो एंड कैन बी रेप्लिकेटेड एनी टाइम. एंड कमिंग टू द कैपेसिटिव स्कैनर्स इन टूडेज वर्ल्ड, कैपेसिटिव स्कैनर आर मोर कॉमन एंड फाउंड इन मेनी फोन्स. लाइक 6-7 हज़ार के फोन्स पे भी आजकल कैपेसिटिव स्कैनर्स आ जाते हैं. एंड इट मेजर्स द फिंगर बाय यूजिंग द ह्यूमन कंडक्टिविटी, और इन सिंपल टर्म्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है एंड इट क्रिएट्स अ डिजिटल इमेज दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. सो टू इफ आई गो इन मोर डिटेल, सो उसका क्या है, दो कैपेसिटिव स्कैनर इट यूजेस टाइनी कैपेसिटर एरे सर्किट्स. आई एम गोइंग इन मोर टेक्निकल. दैट ट्रैक्स द डिटेल ऑफ द फिंगरप्रिंट. इट यूजेस द रिजेस ऑफ द फिंगरप्रिंट दैट इज प्लेस्ड ओवर द कंडक्टिव प्लेट्स, जो चेंज करता है चार्ज स्टोरेज को इन टू द कैपेसिटर. फाइल द एलेस और द एयर गैप्स लीव द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर अनचेंज. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर सर्किट जो होता है वो ट्रैक करता है ये चेंजेस को, सो दैट ये रिकॉर्ड हो सकता है इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, विच इज बेसिकली नथिंग अ डिजिटल डेटा दैट कैन बी एनालाइज. एंड ऑल्सो एज कम्पेयर टू द ऑप्टिकल सेंसर्स, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाईपास सिंस एन इमेज कैन नॉट गेट पास्ट कैपेसिटिव स्कैनर. एंड एंड जैसे मैंने बोला था ऑप्टिकल में एक इमेज होता है तो इमेज कैन बी ट्रैक्ड वेरी इजीली, बट इन दिस
जो वो अपन लोग देखते हैं ना कि चोर लोग ऐसा फिंगरप्रिंट मतलब सेलो टेप से फिंगरप्रिंट निकाल के ट्राई करते हैं, सो दैट कैन नॉट हैपन
यस यस कैपेसिटिव में नहीं होता बिकॉज मैंने जैसे बोला उसमें टाइनी कैपेसिटर रहता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट करता है वो, सो कैपेसिटिव स्कैनर्स आर मोर रिलायबल। एंड हमने ये भी नोटिस किया रहेगा लाइक जो कैपेसिटिव स्कैनर रहते हैं वो दोज आर मच फास्टर अगर हमने ऑप्टिकल से स्कैन किया तो, बिकॉज ऑप्टिकल सेंसर्स में क्या होता है अगर आपके हाथ में ऑयल वगैरह लगा हुआ है तो डिटेक्ट नहीं होता, बट इन कैपेसिटिव अगर थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है
एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटिव एंड ऑप्टिकल, लाइक मतलब जो अनलॉकिंग का स्पीड रहता है दो फोन्स के बीच में अगर उसमें एक ऑप्टिक सेंसर और एक कैपेसिटिव सेंसर है तो दोनों के जो अनलॉकिंग के स्पीड में जो डिफरेंस आता है वो काफी ज्यादा रहता
है। यस बोल सकते हैं वैसा, वो डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है कि उसका सेंसिटिविटी कितना रखा है उन्होंने, दैट डिपेंड्स ऑन द टोटल सेंसिटिविटी। एंड इससे एक और पॉइंट आता है कि फिंगरप्रिंट मैचिंग और इन अलग टर्म्स और अदर टर्म्स accuracy is the key. So coming to the point, today a large number of application depends on the automated fingerprint recognition. So the dependence has grown to the level where application will render if the fingerprint recognition gets out of picture. One of the key factors driving the popularity of fingerprint biometrics is the unmatched balance of convenience with security offered by this technology. फॉर एग्जाम्पल हम अटेंडेंस पर्पज के लिए लेते हैं, सो हम लोग ने देखा रहेगा ना हम लोग के कॉलेजेस में या कॉलेजेस छोड़ा हम लोग के स्कूल टाइम में टीचर्स लोग हम लोग फिंगरप्रिंट देते थे अपना एज एन अटेंडेंस पर्पज, सो इससे क्या होता है देयर अटेंडेंस कैन ऑल्सो भी ट्रैक्ड एंड द एक्यूरेसी भी रहता है कि कौन प्रेजेंट था कौन लेट आया कौन एबसेंट था, सो दिस इज एंड इट इज ऑल्सो कन्वीनियंस एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिंगरप्रिंट स्कैनर to maintain. If you design them to be highly secure, then it would become inconvenient. On the other hand, the high level of convenience would compromise security. So basically, एक balance रखना बहुत maintain है between the optimal level.
There should be a proper sweet balance between the security that we provide and the convenience for the whole system to be on correctly.
Yes, correct. सही बोला. Because ये तो security है ना, convenience balance is also the reason why sometimes fingerprint scanner refuse to pass. मतलब हम लोग तीन चार बार भी press करते हैं तो despite the registered finger would हम लोग को detect नहीं करता. Like if they find your scan to have not enough details, they might ask to rescan to ensure that the authorized person is using the process. So इसमें कैपेसिटिव स्कैनर्स काम आते हैं, लाइक हमने नोटिस किया रहेगा जो भी फिंगरप्रिंट मशीन रहता है लेट इट बी इन द मॉल्स उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट रहता है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास, लाइक उस पर हम लोग फिंगरप्रिंट रखते हैं तो इट कैन इजीली गेट वाइप्ड आउट इट कैनॉट बी गेट ट्रैक्ड, इसीलिए उसका एक्यूरेसी का थोड़ा ऊपर नीचे होता है बट दैट इज सेफर ऑप्शन। एंड कमिंग टू दिस एक्यूरेसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। So, मैं बोल रहा था जो अपना इस जो फिंगरप्रिंट सेंस होते हैं ना इसमें एक्यूरेसी जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है बिकॉज जो हम लोग के एनवायरमेंटल फैक्टर्स रहते हैं सच एस विंड हो गया मॉइस्चर हो गया रेन हो गया दैट प्लेज अ की रोल बिकॉज दैट्स वाई हम लोग ने देखा रहेगा कि वेन एवर वी यूज अ फिंगरप्रिंट हम लोग का फिंगर वाइप करते हैं एक बार कि इंश्योर कि वो वन पास वन टैप में गेट पास्ट, सो दिस फैक्टर्स डायरेक्टली अफेक्ट द फिंगरप्रिंट इमेज क्वालिटी दैट इज कैप्चर्ड बाय द सेंसर। इन फैक्ट द फिंगरप्रिंट इमेज एक्यूरेसी इज द की टू द मैचिंग परफॉर्मेंस विच वी हैव कवर्ड। सो बट नाउ कमिंग टू द एरर्स और द फॉल्ट्स जो लाइक आते ही हमेशा एट यूजर्स लेवल फिंगरप्रिंट identification technology may seem impassable. If you register one finger, there is no way you would be able to authenticate using another finger. There are chances that you have already tested it your electric device such as phones ho gaya ya laptops ho gaya using different fingers. But aisa zaruri nahi hai ki tumne jo finger apne jo fingerprint apne phone mein dala hai wahi same fingerprint detect ho. To alag इसमें. सो एरर्स इन फिंगरप्रिंट स्कैनर आर केप्ट अंडर कंट्रोल. सो आज टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं टू एंश्योर ऑप्टिमम सिक्योरिटी एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम. एंड बायोमेट्रिक सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स ऑल्सो हेल्प एक्सपर्ट इवेलुएट द सिस्टम ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया एज वेल एज अलाउ देम टू कीप द एरर अंडर अ सर्टन थ्रेशोल्ड. लाइक हमने देखा रहेगा लाइक अगर थ्री टाइम से ज्यादा हम लोग अटेम्प्ट रॉन्ग हो जाता है तो इट डजंट अलाउ टू एंटर. सो वो उसमें जो मेन सर्वर है या जहाँ पे पूरा डेटा बेस है वो ट्रैक रखता है. कमिंग टू द फॉल्स एक्सेप्टेंस इशूज बोलते फॉल्स एक्सेप्टेंस एट द नेम सजेस्ट और जो बोलता है इस एनॉर्मस आउटकम इन अ फिंगरप्रिंट सिस्टम जिसमें सिस्टम जो होता है वो कभी कभार अनरजिस्टर्ड और अनऑथोराइज फिंगरप्रिंट स्कैनर्स को एक्सेप्ट करता है एंड एक्सेस दे देता है. दैट इज बिकॉज जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना उसका एक्यूरेसी इज लाइक नथिंग. अगर कोई भी फिंगरप्रिंट मैच हो गया ना सपोज मेरा हुआ या मेरे किसी एक फ्रेंड का हुआ लाइक हम दोनों का फिंगरप्रिंट अगर 20% भी मैच हो गया ना तो इट विल एक्सेप्ट इट. सो फॉल्स एक्सेप्टेंस कैन बी मोर कंसर्निंग एज दे कैन लेट एन अनऑथोराइज्ड यूजर गेन एक्सेस टू द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. एंड ऑल्सो जो ऑल्सो इंसिडेंट्स ऑफ फॉल्स एक्सेप्टेंस टेक प्लेस ड्यू टू एनॉर्मस मैचिंग ऑफ सैम्पल acquired by performing authentication as I said which belong to an authorized sensor. So this is what I had regarding the sensors. Now coming to the fingerprint sensors on the smartphone industry which is one of the key roles for a smartphone nowadays. Like we just set a pin for one time and we always use the fingerprint ke bina aisa lagta hai ki phone mein kuch hai hi nahi. So the world's first phone that came with a fingerprint scanner that was back in 2004 a company named Pantic that released the phone Pantic GI 100. And not only usme fingerprint scanner ka recognition tha usme ek extra feature tha fingerprint authentication and fingerprint speed dialing. Like 2004 mein it was a very huge feature. And coming to the modern day smartphones, the most popular iPhone 5S that came with the Touch ID was something that attracted a customer like anything. Like uske pehle bhi when Samsung was there with their Galaxy S4 usme tak fingerprint nahi tha and jab Apple ne 5S laya and public went crazy. लाइक ये क्या है एक फिंगर प्रेस करने से फोन अनलॉक हो जाता है एंड लाइक एंड आईफोन 5S के सेल्स वर लाइक ह्यूज. एट फर्स्ट द फिंगरप्रिंट स्कैनर वाज जस्ट यूज फॉर अनलॉकिंग द डिवाइस बट नाउ इट्स कैपेबल ऑफ मेकिंग सिक्योर ट्रांजेक्शन. लाइक एज वी नो दैट वॉट एवर एप्पल डज एप्पल जो भी करता है सैमसंग नेक्स्ट उसके बाद करेगा ही करेगा फॉर श्योर. सो सैमसंग फॉलोड एप्पल एंड केम विद अ स्वाइप फिंगरप्रिंट स्कैनर इन देयर गैलेक्सी S5. That was a huge, मतलब the fingerprint accuracy was very bad. Like it was not tap, just swipe करना पड़ता था. So उसके बाद Samsung ने before Samsung Pay they had a partnership with PayPal in 2014. Unfortunately, PayPal doesn't exist anymore. Since then, we have been watching more and more OEMs coming with fingerprint scanner and fingerprint scanners like. And also right now the numbers are increasing rapidly. Like even a 5K ka phone mein bhi capacitive fingerprint scanner rehta hai. So it can be also used for local security. Still I would suggest ki a two factor authentication jo hota hai na, it's very necessary. Like if a phone get hacked or stolen the fingerprint is compromised, so you can use a secondary device or enter the recovery key to recover everything. And coming to the this, but relying on new technology without a secondary recovery option isn't a good idea. मेरे हिसाब से, like हम जब भी Gmail login करते हैं,
authentication रहना ही चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम्हारा phone चोरी हो गया, let's say for some particular reason, मेरा हो गया था, happens with everyone. So अगर phone चोरी हो जाए, तो you should have some way of keeping the people, like जो चोर है तुम्हारा, like keeping them out of the whole system, keeping them away from your fingerprint data, because फॉर इंडियंस फिंगरप्रिंट जो डेटा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो तुम्हारा फिंगरप्रिंट का जो डेटा है इट इज लिंक्ड टू योर आधार कार्ड ऑल्सो. तो आधार हैज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू, उसमें तुम्हारा रेटिना स्कैन भी रहता है. सो थिंक अबाउट इट, इट हैज अ रियली ह्यूज डेटाबेस दैट इज लिंक्ड टू योर फिंगरप्रिंट बिकॉज फिंगरप्रिंट के थ्रू काफी सारी चीजें होती है. फोन अनलॉक होता है, एप्लीकेशंस अनलॉक होते हैं, पेमेंट्स वी कैन से ऑथराइज होते हैं. तो काफी सारी चीजें हैं जो वी कैन से फिंगरप्रिंट के थ्रू ऑथराइज होती है. सो वी शुड हैव सम वे ऑफ गेटिंग अराउंड थिंग्स एंड हैविंग अ बैकअप ऑफ एवरीथिंग, राइट?
यस एवरी, यस फॉर श्योर. सो कमिंग टू दिस, मेरे पास कुछ FAQs है और द जनरल फैक्ट्स, आई विल एंड विद दिस. सो द फर्स्ट एवर फिंगरप्रिंट स्कैनर फोन, as I mentioned earlier, Pantech G100. So, and coming to second point, which was the first fingerprint scanner mainstream phone? It was neither Samsung or Apple, but it was one of the most popular brand, Toshiba, that brought the Toshiba G500 in the first smartphone with a fingerprint scanner. Means Samsung or Apple जैसे बड़े ब्रांड्स ने भी नहीं, तोशीबा जैसे तो एकदम अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स बनाता है, लैपटॉप भी एक टाइम पे तोशीबा के लैपटॉप भी फेमस थे, उसने लाया था. यस एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, सो विच वॉज द फर्स्ट टच आई डी फोन, एज आई मेंशन iPhone 5s. एंड कमिंग टू दिस, विच वॉज द फर्स्ट फोन दैट केम विद एन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर? लाइक इट वॉज अ ह्यूज डील. It was the Vivo X20 Plus, and that is an optical in-display fingerprint scanner. When this phone came, public pagale ho gaya ki how come a fingerprint scanner screen ke andar kaise? But as I mentioned, like it is an optical scanner, so it uses the image technology. And it's, I will end
not
with
that particularly accurate, I would say, but it was a good start because abhi jo phone ke optical sensors aa rahe, those are quite, I would say, not particularly accurate, but quite accurate. And matlab abhi jo particularly, yes, jis particular way mein abhi mobile industry ja rahi hai, it is going for a bezel-less display, a chin-less display, I would say a notchless display, but notches abhi bhi kind of common hai. So if like the fingerprint technology agar kafi excel karti hai, to it is going to be an hell of an experience for the future, I would say.
Yes, and also when ये जब आया था तो इसका क्या बोलते जो एरर रेशियो था वो बहुत ज्यादा था. लाइक आउट ऑफ 4 times एक ही बार डिटेक्ट होता था, बाकी टाइम नहीं होता था. फॉर द बेस्ट एग्जाम्पल इज द OnePlus 6T. लाइक उसका फिंगरप्रिंट स्कैनर वॉज वेरी स्लो, बट जब उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आया जब OnePlus 7 series, द फिंगरप्रिंट स्कैनर का एक्यूरेसी वेंट एज लो एज 0.3 seconds. लाइक जस्ट टच एंड इट विल अनलॉक. सो सैमसंग को इसके भी एक और स्टेप ऊपर जाना था, सो दे ब्रॉट द गैलेक्सी S10 series विद एन अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर. लाइक इट इज वेरी एक्यूरेट, इवन अगर आपके हाथ में ऑयल लगा हो, कुछ भी लगा हो, बिकॉज इट्स एन अल्ट्रासोनिक स्कैनर, सो इट कैन डिटेक्ट योर फिंगरप्रिंट वेरी गुड. लाइक बहुत अच्छे से हो सकता है. एंड अल्ट्रा एंड अपार्ट फ्रॉम सैमसंग और किसी ब्रांड ने ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया है. हाँ, इट वॉज अ फर्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट इन द S10, सो इट वॉज स्लो, बट कमिंग टू द S20 एंड द S21 series, सैमसंग ने काफ़ी इम्प्रूव किया. उसका जो स्पीड है काफ़ी इम्प्रूव किया है, एंड उसका जो एक्यूरेसी इट्स रियली एक्यूरेट. लाइक एरर रेशियो इज लाइक 1:10, इट्स दैट एक्यूरेट.
ऐसा है कि इट इज ऑल अबाउट द टाइम R&D एंड द होल सेटअप का के पीछे जो रिसर्च का जो पूरा पॉइंट है वो उसी पर डिपेंड करेगा कि हाउ फास्ट एंड एक्यूरेट योर सेंसर इज गोइंग टू बी.
यस यस, एंड एल्गोरिथम पे भी डिपेंड करता है.
या एल्गोरिथम इज अ बिग पॉइंट फॉर दैट.
एल्गोरिथम इज द बिग पॉइंट
बीइंग मैच्ड विद देन जो इमेज है हमारे डेटाबेस में. इट इज अ लॉट टू थिंक अबाउट राइट नाउ, बट आई गेस इट वाज अ रियली ग्रेट पॉइंट टू कम अप विद. सो एट दिस नोट वी वुड लाइक टू कंक्लूड दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट एंड वी विल बी सीइंग you all guys soon in the next podcast. So stay tuned. Bye bye guys.